सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
वेलकम टू सोच विचार। टुडे वी गॉट मिस्टर वासिफ रिजवी, एन एजुकेशनिस्ट ऑफ रिप्यूट हु इज नाउ इन पाकिस्तान। He is the president of Habib University. Habib University is a new venture that has just come up. Well, not just come up. It's been there for 5 or 6 years. It is one of the prominent universities, private sector universities, I should say, that is rising strongly in the space of education in Pakistan. It's a bold new venture, I think financed by the Aga Khan. So very proud to welcome Mr. Wasif Rizvi. Rizvi sahab, Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, Nadeem sahab. How are you?
Bilkul theek, Rizvi sahab. Can you please briefly introduce yourself first, taki hamari audience ko pata chal jaye, you know, your background, etc. Then we'll go into education.
Sure. Before I do that, main aapki thodi si tasheeh kar dun. Habib University is supported and is funded by the Habib family, the famed Habib family.
Okay.
Aga Khan funded another great institution in Pakistan, which is called the Aga Khan University.
Absolutely. Okay, that's good. I'm glad you mentioned that. I mistook the two, right? Fair enough.
Anji. Right. Mera naam, thank you so much. Mera naam Wasif Rizvi hai, and I have the privilege and honor to be the founding president of Habib University. Mera background, shayad usse bhi aap... थोड़ा सी कंफ्यूजन हुई हो। आई यूज टू वर्क फॉर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क फॉर मेनी इयर्स और
आई थिंक यू राइट, मैंने वो दोनों को कोरिलेट कर दिया।
जी उसको कोरिलेट किया, एग्जैक्टली। हाँ, ये कहीं ये कॉन्फ्लुएंस है। तो जी हाँ, मैं मेरा बैकग्राउंड एजुकेशनल डेवलपमेंट है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था बिटवीन कैनेडी स्कूल एंड स्कूल ऑफ एजुकेशन, विच गेव मी सम इनसाइट into policy as well as educational development around the world. Uske baad maine Nadeem sahab aap wala route kuch arse ikhtiyar kiya, which is to work for global development agencies, and then I came to Pakistan somewhere around 2002 jab maine Aga Khan development network mein I took their portfolio of education, and they have an education service. I was heading that. और उस education service का बुनियादी मकसद उस वक्त ये था कि वो जो आगा खान के बहुत से स्कूल हैं पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं, कि वो उस वक्त अपनी जो यूनिवर्सिटी है, जो फिलहाल एक मेडिकल कॉलेज है, उसको वो एक्सपेंड करना चाह रहे थे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जो कि हार्वर्ड का एक टर्म है, FAS, विच इज़ देयर कॉलेज लिबरल आर्ट्स, तो उसमें वो एक्सपेंड करना चाह रहे थे। बट that project sort of ran into certain delays. Nevertheless, I worked with the Aga Khan Education Service for a few years before Sayyid Babar Ali, who is my mentor, who is the founder of LUMS, and a wonderful friend. He introduced me to Habib's somewhere around 2008. And that's when we started to talk about this university, and we formally started the project on 14th of August, 2010. That's when our first board meeting occurred in Dubai. So that's a brief background.
Very nice. Achha, ye bataiye ki you've raised a number of issues. Aap kafi is pe baat karne ki zarurat hai. Ye bataiye pehle to ki jo aapki Habib University hai, isme mashallah Habib family ne bada acha kaam kiya, inhone ye isme invest kiya. Ye bataiye ki aap kya dekhte hain, ab Pakistan mein bahut sari universities ho gayi hain, mera khayal koi 180 universities hain, jisme se shayad mera khayal 1/3 koi 50 ek private sector mein hain. To aapki kya comparative advantage hogi, aapki kya vision hai jiske sath aap soch rahe hain ki aap chalenge aage?
Ha, Pakistan mein ab to neck and neck hi hai galban, mera khayal hai 3-4 universities number ke lihaz se fark reh gaya hai private to public mein, aur 20% ke kareeb enrollment jo hai, tertiary enrollment, wo bhi private hai, which is actually very very high, because the highest being in the US, uske bare mein bhi hum thodi baat karenge, jisme 30% overall tertiary enrollment is in private institutions. So Pakistan is already at 20%, and Pakistan is a fairly large country. To lekin overall agar aap dekhe to Pakistan mein tertiary enrollment is woeful. It's less than 2%. I don't even believe in that figure. I think it's maybe less than 1%. But nevertheless, it is well below the average of comparable countries. Mm-hmm. It's nowhere near the average of advanced countries. Mm. So Pakistan mein, I don't agree with the statement. It seems sort of intuitively true that both universities were very low. But if you look at the scale of the potential in Pakistan, it's not something special. ہماری البتہ پاکستان کی یونیورسٹی میں ایک فنڈامنٹل پرانے دو مسئلے ہیں. ایک تو انٹلیکچوئل ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان از ون آف دا لوئسٹ رینکس کنٹریز ان ٹرشری ایجوکیشن ان دا ورلڈ. پاکستان کا ورلڈ اکنامک فورم کا ایک انڈیکس ہے جو مختلف لیولز آف ایجوکیشن کو بھی رینک کرتا ہے. پاکستان از آئی تھنک رینک پروبیبلی ایٹ 150 آؤٹ آف 160 کنٹریز دیٹ دے رینک. اور پاکستان سے نیچے جتنے بھی ملک ہیں وہ سب کے سب سب سہارن افریقہ میں ہیں with the exception of Haiti. And that's one country which is not in sub-Saharan Africa but is in below Pakistan. So Pakistan is in a very weird peer group as far as tertiary education is concerned. اب اس سے اگر آپ موازنہ کریں میکسیکو برازیل انڈونیشیا ایران ترکی آف کورس انڈیا اینڈ چائنا یہ میں نے جان کے ملکوں کے نام لیے کہ یہ بڑے میجر پاپولیشن سینٹرز ہیں اور کچھ ان کے ایشوز بھی پاکستان سے ملتے جلتے ہیں تو وہ کہیں آگے ہیں. فار انسٹنس ایران از رینکڈ ایٹ آئی تھنک 58 ان دا ورلڈ رائٹ کمپیئر ٹو آور 130 ان ٹرشری ایجوکیشن. میکسیکو از رفلی اراؤنڈ دیٹ ایریاز. تو پاکستان از دا اونلی کنٹری وچ ہیز مور دین 100 ملین پیپل وچ از رینکڈ دس لو. Even Bangladesh and Nigeria are ranked above us or slightly above us. تو اس کے وہ بھی ایک انٹرسٹنگ سا کوریلیشن ہے کہ جہاں جہاں آبادی زیادہ ہے جن ملکوں کی ان کا آبویس سب سے بڑا پوٹینشیل اس کے لوگ ہیں اور دے ہیو انویسٹڈ وائزلی ان ہائر ایجوکیشن ٹو کیپیٹلائز آن دیٹ پوٹینشیل. اینڈ پاکستان سیمس ٹو بی پریٹی بلیگرڈ ایز فار ایز ہائر ایجوکیشن از کنسرنڈ. اور اس کے کچھ بنیادی اس کی وجوہات ہیں. اس میں سب سے بڑی تو یہ ہے کہ پاکستانی ہائر ایجوکیشن کی جو انٹلیکچوئل ساخت ہے وہ بہت کمزور ہے, امپاورشڈ ہے. یہ 60s میں کہیں فیصلہ کیا گیا تھا ناٹ ان لائک مینی ادر پوسٹ کالونیل سوسائٹیز کہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن بنیادی طور پر ووکیشنل ہوگی. یعنی وہ یونیورسٹی بس نام کی تھی, صرف آپ کو کچھ ہنر سکھانے کے لیے کچھ ادارے کر دیے گئے. یہ ایوب خان صاحب نے غالباً فیصلہ کیا تھا جس میں پاکستانی یونیورسٹیز راتوں رات انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں بدل گئیں. تو وہ ایز سچ تو یونیورسٹی رہی نہیں. اور دوسرا پھر اس کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ جب پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بھی اجازت ملی پاکستان میں 1983 میں پہلی یونیورسٹی تھی جو آغا خان تھی, اس نے بھی وہ بھی اس انرشیا سے باہر نہیں آئے. وہ بھی دے پلیڈ لیٹس کال اٹ دے پلیڈ کائنڈ آف سیف اور آئی ڈونٹ نو واٹ دے ور تھنکنگ بٹ دے اسٹارٹیڈ اے میڈیکل اسکول. جو دوسری پرائیویٹ یونیورسٹی تھی وہ لمس تھی, وہ 1987 میں آئے, وہ بھی بزنس اسکول سے اس نے آغاز کیا. سو یہ جو بنیادی ایک انٹلیکچوئل امپاورشمنٹ تھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا ایون آفٹر انیشیشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن.
سو پاکستان کہ ہم نے جو زور دیا, ہم نے ووکیشنل ایجوکیشن پہ زور دیا, اپنی یونیورسٹیز کو انجینئرنگ میڈیکل بزنس اسکول میں سیپریٹ کر دیا, اور یہ ابھی تک ٹرینڈ چل رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بنا دیں لا یونیورسٹی, ہم میڈیکل یونیورسٹی بنا دیں انجینئرنگ. حالانکہ میرے نظریے میں تو یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں سب کچھ اکٹھا پڑھایا جائے, کیونکہ ایک سنرجی ہوتی ہے, ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے انٹلیکٹ کی ایک دوسرے سے, اور ہم سپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پر یہ آپ کہہ رہے ہیں آفیشیل پالیسی ہے یا کہ یہ
جی جی آفیشیل پالیسی تھی. ایوب خان صاحب نے پاکستان میں ڈکری کی تھی 1961 میں. ٹھیک, اس کے پیچھے بھی ایک بڑا اچھا انٹرسٹنگ اینیکڈوٹ ہے which even if it's not true but it has accomplished that particular purpose. کہ ایوب خان صاحب اس پاکستان تشریف لے گئے اور اس وقت ان کے خیال میں تو ان کی پوجا کی جاتی تھی پاکستان میں, لیکن جب وہاں گئے تو وہاں ان کے کچھ ان کے مخالفت میں کوئی مظاہرے ہوئے, it was a shock. تو اس وقت ہم جو صاحب اور مشیر تھے وہ زیادہ تر امریکی تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ یونیورسٹی جو ہے بڑا مسئلہ ہے. وہ زیادہ تر جو مظاہرے تھے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کر رہے تھے. انہوں نے اپنے ملک کا بھی رونا رویا کہ ہمیں بہت ستاتے ہیں ہماری یونیورسٹیز. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو ٹریڈ اسکولز میں بدل دیں, ان کو یہ تاریخ اور سیاست اور کلچر اور فلسفے سے دور رکھیں.
دور رکھیں, اچھا ٹھیک.
اور ایسے ہی انہوں نے کیا اور اٹ ہیز ورک لائک اے چارم. तो आप खुद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एलम हैं, आपको मालूम यूनिवर्सिटी जो है विदाउट फंडामेंटल प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के अपने आप को यूनिवर्सिटी नहीं कह सकती.
बिल्कुल सही.
तो ये दैट्स व्हाट अनफॉर्चुनेटली हैपेंड इन पाकिस्तान, राइट? एंड उसके अब तो खैर देयर आर नाउ कैटास्ट्रोफिक फॉलआउट दैट वी हैव एनकाउंटर्ड. तो उसके बाकी तो चलिए एकेडमिक्स और रिसर्च के ना होने और ये और वो ना होने का रोना रोते रहेंगे, लेकिन हमारा जो माशरा जो है जिस नहज पे खड़ा है अब, और इस पर ब्रिटिश काउंसिल ने एक स्टडी की, उसने कोई 300 टेररिस्ट दुनिया भर से ट्रैक किए जिनमें एक बात कॉमन थी कि दे वर ऑल हाईली एजुकेटेड, और वो उसमें यूरोपियंस भी थे और नॉर्थ अफ्रीकन्स भी थे और पाकिस्तानी भी थे और ऑस्ट्रेलियंस भी थे. उन सब में एक बात कॉमन थी कि दे वर ऑल प्रोफेशनली एजुकेटेड, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, अकाउंटेंट्स थे. एक और बात भी कॉमन थी कि उसमें से किसी को ने भी ह्यूमैनिटीज की ट्रेनिंग नहीं की थी. और ये बड़ी वाइडली पब्लिश स्टडी है और उस पर अखबारों ने आर्टिकल भी लिखे हैं, आसानी से ढूंढी जा सकती है. तो उसका उसकी यानी दिस इज वन इजी एनालिसिस दैट कैन बी डिड्यूस्ड आउट ऑफ इट इज दैट एवरी थिंकिंग एंड फीलिंग ह्यूमन बीइंग इज एंगेज्ड विद देमसेल्व्स एंड विद द वर्ल्ड अराउंड देम.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
right?
बिल्कुल ठीक है.
Right? So if the intellectual experience does not allow them to reflect on that engagement, something else is going to do it. Right? So this was my conversation, brief one, with Aga Khan actually, not too long ago. We met. So मैंने उनसे कहा कि देखिए, Your Highness, one can be a fully functional human being and not be a doctor. And not be an engineer, and apologies to you, Nadeem Saad, not be an economist. but you can't be one without.
अक्सर यहाँ अपने अमेरिका में बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और काफी दोस्त भी हैं, तो मैं अक्सर उनको आपकी तरह यही छेड़ता हूँ. मैं कहता हूँ कि भाई तुम लोग तो जल्लाद हो, तुम सिर्फ एक मिस्त्री की तरह मेरे जिस्म को छेड़ना जानते हो, पर तुम्हारे मेरे ह्यूमैनिटी मेरे दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं है.
वाह, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है. ऐसे ही है. और ये देखिए, वो चाहे वो जल्लाद हो या उनको ना हो, लेकिन उनकी इंट्यूशन तो उससे इंगेज है ना.
सही.
तो मेरा ये ख्याल है कि जब हमने सबसे अपने होनहार बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में सिर्फ डालना शुरू कर दिए, तो वो होनहार उसमें से कई ऐसे थे जो अपने इर्द गिर्द जो तबाही हो रही है, जो डिटेरियरेशन हो रही है, उस पर परेशान होते थे.
सही कह रहे.
लेकिन उस परेशानी से मीनिंगफुली इंगेज होने के उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है.
सही.
ना ही वो किसी ऐसे तजुर्बे से गुजरे, तो उन्होंने उसके बारे में चीजें अखज करना शुरू की और बड़ी खौफनाक चीजें अखज करना शुरू की. सो दे वराइफी दे वांट टू दे फील दे हैव अ कॉलिंग दीज डॉक्टर्स एंड दीज इंजीनियर्स एंड दीज अकाउंटेंट्स हु आर फाउंड इन केव्स ऑफ अफगानिस्तान. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, लेट्स यू नो, but that their understanding of that calling, their response to that calling has gone awry because the universities failed to play their role.
theek theek theek. acha chale, ye to ho gaya. to phir bataiye ki ye aap sab dekhte hue aapne Habib University mein kya socha hai, kya karenge yahan?
So Habib University is the first university in Pakistan which is a liberal arts university.
Achha.
Right. So all students have to go through a liberal core, which is actually not too dissimilar than Chicago, compared to Chicago or Columbia or wherever. But we have crafted the liberal core very contextually, right? So essentially, it's a system of what we call 7 forms of thought and action. And 11 courses, they have to be taken in these 7 forms, right? Out of whatever 30, 40 courses they take through the course. So there are historical and social thought, philosophical thought, language and expression, creative practice, formal reasoning, quantitative reasoning, scientific method and inquiry. So there are 11 courses which are distributed in these forms of thought that they have to take, right? Then the other, the entire curriculum, we encourage our faculty to nominate courses, one or maximum 2 of these forms of thought. So fill the university requirements for students to have an opportunity to deepen in the areas that have interested them, right? So that's the fundamental curricular difference in the way Habib University is structured. Dusra jo hai, Pakistan ke andar structural problems hain bahut, aur aap to uske mahir hain. तो आई अपोलोजाइज इफ आई एम सेइंग समथिंग आउट ऑफ नाइविटी. वो उसमें एक बुनियादी है, वो है एक्सेस का. अब पाकिस्तान की जो हायर एजुकेशन की जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है, दैट्स अ स्टोरी ऑफ एसेंशियली फोर ग्राफ्स, राइट. क्योंकि हम फोन पे बात कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको ग्राफ जो है वो विजुलाइज करने की आई अलर्ज यू टू डू दैट. सो नंबर वन इज द ग्राफ दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, दैट पाकिस्तान ग्राफ ऑन दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स इज लाइक मारियाना ट्रेंच, राइट. इर्द गिर्द के मुल्क का रैंक वेरी हाई, पाकिस्तान इज राइट एट द बॉटम इन हायर एजुकेशन. और दूसरा ग्राफ जो है पाकिस्तान में वो है, मैं उसे कहता हूँ 96% और 4% का ग्राफ, राइट. सो इट्स अ पाई चार्ट, 96% इज वन थिंग एंड 4% इज अनदर. दैट 96% आर द परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हु कम आउट ऑफ लोकल एजुकेशन बोर्ड्स, व्हिच आर पाकिस्तान के जो लोकल बोर्ड्स हैं, और एक आगा खान बोर्ड है, वो भी समझे लोकली है, प्राइवेट बोर्ड है, लेकिन इट सॉर्ट ऑफ एसेंशियली इज वेरी लोकलाइज्ड. और 4% पाकिस्तानी हायर स्कूल ग्रेजुएट्स डू इंटरनेशनल बोर्ड्स, विच इज योर ए लेवल, ओ लेवल, एंड वेरी आटे में नमक के बराबर अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा एंड IB. अब ये 96 और 4 वाला ग्राफ जो है, इससे नेक्स्ट पाई चार्ट में वो 13% और 87% का ग्राफ है. कि आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 87% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दैट 4%, एंड ओनली 13% आर फ्रॉम दैट 96%. यानी ये मुझे गवर्नर साहब जो हैं सिंध के, वो हमारी यूनिवर्सिटी अगले दिन आए हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टडी कंपेरेटिव की इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, कि 1987 में IBA में कराची में 75% स्टूडेंट्स वर फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, 1987, व्हिच इज नॉट लॉन्ग अगो, जस्ट यू नो 30 इयर्स अगो. और 2016 में 1% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, राइट. तो आप हमारे यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल बॉटलनेक बन चुकी है कि अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आप बनाएं तो आप सवाय ए लेवल ओ लेवल के किसी को ले ही नहीं सकते. तो जो प्रोसेस है आपका वही उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर देता है बाकियों को. दूसरा एक जो है वो है, वो तो सारी दुनिया का एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एक्सेप्ट फॉर द US. अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं थी 50 साल पहले, थी नहीं, एंड एज एन इंस्टीट्यूशन दे डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट फॉर द US, वेयर दे आर देयर फॉर 400 ईयर्स. अमरीका में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पहली, वो अमरीका से 150 साल पुरानी है. 1636 में हार्वर्ड बनी थी, 1776 में अमरीका का आगाज हुआ है. और इसलिए वहां पर देर इज अ यूनिक ट्रेडिशन of institutions of higher learning which is not found anywhere in the world. Now, so what did that tradition do? A, it influenced their advent of even their public universities greatly. Apart from getting into the intellectual uniqueness that they possess, which they do, and part of it we have emulated in liberal arts, their financial uniqueness is that they are institutions which are owned and supported by the society. तो अमेरिका के अंदर देर इज अ वेरी एडवांस सोफिस्टिकेटेड फिलेंथ्रोपिक ट्रेडिशन विच सपोर्ट्स हायर एजुकेशन, राइट. अलमनाय के थ्रू करते हैं, फाउंडेशन करती हैं, लोग करते हैं. पाकिस्तान हालांकि जनरस मुल्क है, यहाँ और यहाँ क्या स्वीडन में तो नॉर्वे में जर्मनी में कोई ऐसी ट्रेडिशन ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी को भी पैसे देने हैं. तो यहाँ पे लेस देन 1% ऑफ फिलेंथ्रोपी, दिस इज माई फोर्थ ग्राफ, is for higher education, less than 1%, minuscule. ठीक. क्योंकि लोगों की conceptual universe में ये बात नहीं है. ठीक. क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो higher education थी वो हुकूमत के पास थी. ठीक. अब कोई private university गरीब काम करना भी चाहे अच्छा, एक तो उसको पहला धक्का पड़ता है कि structural problem है education में, वही 96-4 वाला, और फिर उसको दूसरा धक्का पड़ता है financial structure का कि आप कहीं से पैसे जमा नहीं कर, लोग आपका मुंह तकने लगते हैं, आप कहते हैं ये अच्छी एलीट जबरदस्त यूनिवर्सिटी के लिए पैसे दें जिसकी शक्ल बहुत अच्छी है, बड़ी फैंसी कैंपस है. हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फिलेंथ्रोपी इज एसेंशियली चैरिटी, कि आप गरीब आदमी को पैसे देते हैं, ये फिलेंथ्रोपी है. सोफिस्टिकेटेड फिलेंथ्रोपी फॉर कल्चरल रिवाइवल, फॉर सिविलाइजेशनल रिवाइवल, फॉर म्यूजियम्स, फॉर यूनिवर्सिटीज, इट डजंट एग्जिस्ट. तो इन दोनों चैलेंजेस के सामने Habib University, apart from our unique curriculum, what we have introduced is that we have taken 25% of our class every year, full on, full scholarship from local boards.
Achha. So that's a constraint that you've got. Aapne usko
nahin, hum to lete hain. 50 bache hum bilkul full scholarship par. Unko they go through a different program, which we call TOPS, which is, but they have to be very good. And then we prepare them for our entrance test, right? For 6 months, we work with them, and they do very well. उसमें कोई 500-700-800 बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन 50 के करीब हम उसमें सेलेक्ट करते हैं। उसमें दो फायदे हैं कि जिन सब ने अप्लाई किया वो भी उस प्रेपरेटरी प्रोग्राम से गुजरते हैं, तो अगर हमारे यहाँ नहीं कहीं और जाने की उनके अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाती है। तो ये तो हम $2 million साल का प्रोग्राम हम अपने खर्च पे चलाते हैं। उसके अलावा वी हैव अ कंप्लीट नीड्स ब्लाइंड पॉलिसी एज वेल ना। ये तो हमने ये वाला जो एक बैरियर बना हुआ था अगेंस्ट लोकल बोर्ड्स उसको एड्रेस किया। फिर जो फाइनेंशियल एक्सेस का बैरियर है वो तो कम्प्लीटली एड्रेस्ड है इन आवर ओवरऑल एडमिशन एज वेल, राइट? सो एसेंशियली इफ यू आर गुड इनफ टू गेट इन वी विल फाइंड अ वे टू पे फॉर यू। It's a tough university to get in, but if you've gotten in, university has to figure out. Aur wo isiliye ki we want to really create a proper US university like model. Ke hamari operational sustainability should not be imbalancedly dependent on tuition. Ab Harvard University ka operating expense ka mera khayal hai koi 20% bhi tuition se nahi aata. Right? Aur ऐसा नहीं कि वो माफ हमसे कम है उनका डिस्काउंट रेट, यानी हमारा डिस्काउंट रेट जो है इस वक्त 70% के करीब है, यानी अगर आप हमें 100 रुपए फीस मिली है हम उसमें से सिर्फ 30 ले रहे हैं। हार्वर्ड का विच इज वन ऑफ द मोस्ट जेनरस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड उनका डिस्काउंट रेट इज अबाउट 60 or 55,
पर उनकी एंडाउमेंट बहुत बड़ी है ना जी।
एग्जैक्टली
exactly. 100 बिलियन तो इस वक्त उनकी एंडाउमेंट है, 100 बिलियन डॉलर उनकी एंडाउमेंट है।
लेकिन हम दूसरा जो पाकिस्तान में फिनोमिनल एडवांटेज है वो ये है कि हमें इतने बड़े नंबर इतने जीरोस की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में हम 50-60 million dollars के एंडाउमेंट भी अगर बना लें तो वी कैन पे फॉर अवर डेफिसिट। अवर स्टेडी स्टेट डेफिसिट विल बी अराउंड $4 million, उसमें से आधा अगर हम एंडाउमेंट से दें आधा हर साल पैसे रेज करें। ये जो आपके यहाँ एक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं उसमें से एक से हम भी बात कर रहे हैं, NIESC उसका नाम है, न्यू इंग्लैंड एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस व्हिच एक्रेडिट्स मोस्ट ऑफ आईवी लीग यूनिवर्सिटीज। तो उनकी पहली शर्त है यूनिवर्सिटी डेफिसिट मेकिंग हो। तो मैंने उनसे ये उनकी डायरेक्टर है उनसे ये पूछा कि ये आपने पहली शर्त ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड बट व्हाई सो प्रोमिनेंट। उन्होंने कहा इसलिए कि वी वांट टू सी इफ यूनिवर्सिटी इज रोबस्ट इनफ टू एंगेज विद सोसाइटी एंड सोसाइटी ट्रस्ट्स टू गिव इट मनी। तो वो हर साल जो है फंडिंग ड्राइव जो है वो इसलिए है कि देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ ओनरशिप। पाकिस्तान की काफी you know there's a polarized environment and people have strong opinions and there's also security concern. This in itself is a great defense na ki agar logon ne shahar bhar se logon ne paise diye hue hain there is multiple sense of contribution, you create a very robust institution. Again you know in University of Chicago is one of the biggest recipients of the public money of state of Illinois because the state society people take pride in it. Right,
बिल्कुल।
So this is the way we want to introduce a different concept.
बात बिल्कुल सही है। I think I agree with you on all your four charts and all your बाकी भी आपके जो points हैं। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, पर इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो बात की एक तो पहले ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल फंडिंग की। अगर फंडिंग की बात करें तो देखें मैंने जो देखा है जब मैं प्लानिंग कमीशन में था तो मेरी HEC और ख़ासतौर पर बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से काफ़ी झड़प भी हुई इस बात पर कि जी वो कहते हैं फंडिंग का हमारा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपका फंडिंग का प्रॉब्लम है, पर आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? तो सब यूनिवर्सिटीज की तरफ से यह आया कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्टेट पैसे दे क्योंकि स्टेट का फ़र्ज है एजुकेशन करना। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई देखें ख़ासतौर पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कि स्टेट ने आपको बहुत बड़ी एंडाउमेंट दी है। एंडाउमेंट क्या? ज़मीन। आप कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन ले लें, मेरे ख्याल पता नहीं को 1000 acres होगी शायद जो कराची के बीच में है। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में 1700 acres कराची के बीच में है, लाहौर में को 1000 acres लाहौर के बिल्कुल शहर के अंदर, मतलब प्राइम ज़मीनें दी हुई हैं। फैसलाबाद चल जाए वहाँ भी 1000 acres में ज़मीन दी हुई है। मैंने कहा भाई जान आप इस ज़मीन को यूज़ तो करें। तो वो बड़े ऑफेंड हुए कि जी ये कैसे हो सकता है। फिर उनसे मैंने दूसरी चीज़ की, मैंने कहा जी आप बिज़नेस प्लान तो अपना बनाएं। जैसे आपने कहा ना कि आपको एक्रेडिटेशन एजेंसी ने कहा कि भाई आप अपना डेफिसिट मैनेजमेंट का प्लान बताएं और कैसे करेंगे। मैंने कहा जी आप बिजनेस प्लान बनाएं। वो तो उन्होंने जुलूस निकाल दिया कि बिजनेस प्लान हम क्यों बनाएं, ठीक है हम कोई कारोबारी इदारा थोड़ी है। मैंने कहा भाई बिजनेस प्लान का मतलब ये नहीं होता कि आपने प्रॉफिट बनाना है, हम तो आपको पैसे दे रहे हैं, सरकार का जिम्मेदारी है कि आपको पैसे देंगे, पर आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि मचेज आपने जो कहा कि यस हमारी थोड़ी सी विजन, मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी मैनेजर्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटीज को मैनेज नहीं करते डायनेमिकली जैसे यहाँ मैनेज करते हैं। हार्वर्ड की आपने बात की अभी, हार्वर्ड की एंडाउमेंट 100 बिलियन है, सॉरी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, हार्वर्ड की एंडाउमेंट 100 बिलियन डॉलर है, बिल्कुल है, पर आप देखें हार्वर्ड ने एंडाउमेंट को मैनेज करने के लिए क्या रखा हुआ है। हमारा कॉलीग था वो बाद में बहुत बड़ा आदमी बन गया, मोहम्मद अलेरिया, अभी आजकल आप देखें वो जनाब ही इज अ ग्लोबल फिगर, उन्होंने मोहम्मद अलेरियन को हायर किया कि हमारी एंडाउमेंट मैनेज करो, और उसको एंडाउमेंट मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए पैसे उसके प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा दिए। उसको 10 मिलियन डॉलर मिलते थे एंडाउमेंट मैनेज करने के लिए, जबकि प्रेसिडेंट को मिलते थे मेरा ख्याल 4 लाख या कुछ ऐसे, या शायद उससे थोड़े से ज़्यादा। तो कहने का ये मतलब है कि वो लोग टैलेंट को भी ढूंढते हैं। तो मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ, एक तो ये क्या हम लोग इनलाइटेंड मैनेजर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में, नंबर दो क्या हम टैलेंट की परवरिश करते हैं कि नहीं करते।
राइट, नहीं नहीं, जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि ये एक इशू है दुनिया भर में है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मौजूद नहीं थी दुनिया में कहीं पे भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज अ वेरी नेसेंट न्यू इंस्टीट्यूशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर essentially in developing countries like Pakistan have come out of essentially an exhausted public sector jinhone kaha ki yaar chale ab aap khud hi kuch kar le, and not from any kind of well thought out national plan. To us na hi unka maashre ke sath koi rhythm hai, mutabikat hai, na unko khud pata hai ki unko kya karna hai. Public universities सारी दुनिया में जो आप बता रहे हैं ना, ये इस तरह का रिस्पांस जो है अब तो खुद कुछ बेहतर हो गया है। लेट्स से अगर मैं और आप 50 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप ज़रा अपने फंड्स मैनेज करें, तो वो भी हमें वहाँ से भी निकाल देते, बिकॉज एज आई सेड इट वॉज नॉट इन कंसेप्चुअल यूनिवर्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज दैट अपार्ट फ्रॉम द US दैट दे एसेंशियली हैव टू बी अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन विद इन देमसेल्व्स। तो ये कंप्लीट इंस्टीट्यूशन, एंड इन अमेरिका द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्वर्ड्स एंड येल्स एंड कोलंबियाज एंड प्रिंसटन इज एस सच के वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो हैं दे एसेंशियली रन देमसेल्व्स एज दे वुड बी रनिंग अ ग्रेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड आर्बर है वो 12% सिर्फ अपने बजट का मिशिगन स्टेट ऑफ मिशिगन उनको देती है। इसका मतलब है कि वो 88% पैसों का इंतजाम खुद करते हैं।
बिल्कुल,
तो और ये तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर लोग जो हैं जाहिर है वो उसमें कंफर्टेबल हो चुके हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट बन गए हैं, कैपेसिटी की भी कमी है, उनके उनकी कॉम्पिटेंस का भी इशू है, बिल्कुल है, और यूनिवर्सिटीज आर नॉट व्यूड एज अ वेरी इंटरेस्टिंग सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन। इट इज़ यूजली गिवन फ्रॉम यू नो वेरी पेडेंटिक क्राइटेरिया कि जी आप चलें प्रोफेसर थे, लेक्चर थे, प्रोफेसर हो गए, कुछ तजुर्बा हो गया, फिर ये किया वो किया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड आपका बढ़ता गया और फिर आप वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, मैनेजर बन गए। सो इट दैट्स एसेंशियली इज द वे थिंग्स आर डन, एंड दे आर डन एग्जैक्टली लाइक दैट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी।
और वासी साहब एक और भी तो मसला है ना, हमारे यहाँ वाइस चांसलर को खुदा समझा जाता है। आप भी बाहर पढ़े हैं यूनिवर्सिटी, मैं भी बहुत यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, यहाँ वाइस चांसलर और प्रोफेसर का जो रिलेशनशिप है, जो रिलेटिविटी है, वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ प्रोफेसर खुदा होता है यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर नहीं होता, वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेटर होता है।
मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तो वाइस चांसलर होते ही नहीं वहाँ, यहाँ पर तो प्रेसिडेंट होता है अमेरिका में, तो होते हैं वो फिगरेटिव उनके वो उसकी भी, ये सब के सब जो हैं, ये मेरे ये ख्याल है जो बुनियादी बात हम कर रहे हैं ये उसी की मुख्तलिफ डायमेंशन है कि अगर आपका काम जो है इंस्टीट्यूशनली क्लियर नहीं है, राइट, सो यू डोंट नो व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, सो व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड डूइंग, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड टू एंश्योर दैट द विजन ऑफ यूनिवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड एंड यूनिवर्सिटी कंटिन्यूज टू डीपन इट्स सस्टेनेबिलिटी। सो इट्स द चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर एज वेल एज एंश्योरिंग द फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन दे वर्क प्राइमरली विद द प्रोवोस्ट हु इज द चीफ एकेडेमिक ऑफिसर। So whatever is the vision of the president and the board and coming out of their faculty, provost essentially steers that. And all faculty is essentially intellectually independent. And there are certain fences jiske andar unko kaam karna hai, but they are completely independent. And you have absolutely pointed to a very interesting point कि मैं बहुत से लोगों से ये पूछता हूँ कि आप मुझे MIT के प्रेसिडेंट का नाम बताएं। मैंने कहा मैं नहीं पता। मैंने कहा फिर आप MIT के मशहूर प्रोफेसर का नाम बताएं। मुझे वो पांच नाम गिनवा देते हैं, नोम चॉम्स्की तो ये तो वो। And that is the characteristic of American universities. What is celebrated and what is glorified is something very different. अगर आप उसमें से ये वाला काम निकाल दें कि institution has to carefully plan itself and sustain itself and a leader is going to do it, तो वाहिद चीज बन जाती है vacuous glory and authority, जो कि vice chancellor system के अंदर मौजूद है. Even पाकिस्तान के अंदर देखिए उलट काम हुआ ना, जैसे अमेरिका के अंदर private universities पहले आई, पब्लिक यूनिवर्सिटीज बाद में आई तो वो उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया. यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी बाद में आई कि दे एक्ट एसेंशियली लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी.
बिल्कुल सही,
राइट? सो दे देयर वाइस चांसलर्स आर सुपर ग्लोरिफाइड एंड यू नो बिग फिगर्स. दे डोंट नो हाउ टू रेज मनी, सो दे एसेंशियली रिलाई ऑन इन्फ्लेटेड ट्यूशंस, और उसमें सिर्फ वही उन्हीं 4% में से बच्चे आ सकते हैं. और उनका कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, वो उसी चाल में चले जा रहे हैं. कोई 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 कंप्यूटर साइंस का स्कूल है, कोई बिजनेस स्कूल है, कोई लॉ स्कूल है, वगैरह वगैरह. तो ये मैंने कहा ना कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज जो मैंने
तो आप ये बताइए, ये आपकी बातें बिल्कुल बड़ी मुझे दिल को लग रही हैं, वेरी गुड थॉट्स. ये बताइए कि क्या हमारे मुल्क में जो हायर एजुकेशन कमीशन बनी हुई, इतनी यूनिवर्सिटीज बनी है, हमने मेरा ख्याल 2002 से लेके अब तक, मैं प्लानिंग कमीशन से बड़ा लड़ता था. मैं कहता था भाई इतनी यूनिवर्सिटीज क्यों बना रहे हो, ठीक है,
right.
पर हम बनाते जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, धड़ाधड़ बनाते जा रहे हैं. और अब वो मेरे जो सक्सेसर थे अहसन इकबाल साहब, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर लग गए हैं, उन्होंने अब कहा है कि जी हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है,
right.
तो अब ये यूनिवर्सिटी कबाबों की तरह जो बन रही है कि जी आप तल दें यूनिवर्सिटी बन जाएगी, बिल्डिंगें बना दें यूनिवर्सिटी बन जाएगी, क्या ये पॉलिसी दुरुस्त है? और एक और बात इसके साथ ये बताइए कि हमारी एजुकेशन, अब सपोजिंग आपको आज लगा दिया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, आप हमें 2-3 मोटी मोटी चीज़ें बताएं, क्या यहाँ चेंजेस लाने चाहिए हमें ताकि एजुकेशन पॉलिसी, स्पेशली हायर एजुकेशन पॉलिसी बेहतर हो जाए?
देखिए मैं तो 3 मोटी चीज़ें लाऊंगा. सबसे पहले तो ये कि मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ये करिकुलर शिफ्ट जो मैंने अर्ज किया है, कि मैं हर यूनिवर्सिटी को ये कहूंगा कि दे नीड टू डिफाइन डिसिप्लिन वाइड वेरी वेरी ब्रॉड यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट,
जिसको कहते हैं कॉमन कोर.
हाँ, इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के लिए, और उसके भी मैं रूल्स तय करूंगा. ये तो इंटरवेंशन हम करेंगे फ्रॉम अ इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू,
कि हर किसी को पहले इंसानियत सीखना है फिर उसके बाद हुनर सीखना है.
हाँ, और साथ ही साथ दोनों काम भी हो सकते हैं, और उस इंसानियत को हुनर पर अप्लाई करना, हुनर को इंसानियत के ऊपर अप्लाई नहीं करना.
ठीक,
राइट. एक तो ये है. दूसरी चीज है वो ये कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो एक इंतहाई खौफनाक और भोंडा ट्रेंड शुरू हुआ था, जो एक दुनिया में इस वक्त उसका चैलेंज है, जो उनको लोगों को उसके बारे में इनसाइट कम है, वो है विच इज द एडवेंट ऑफ दिस सुपर रिच रिसर्च यूनिवर्सिटी. Advent of super rich university is not too different than this. अगर समझिए कि यूनिवर्सिटी इंसान है, तो ये पटाकी का जो आर्गुमेंट है कि ये तो बिल्कुल एक रेंटियर कैपिटलिज्म की तरह की एक बहुत एक अनसस्टेनेबल सोसाइटी शुरू होगी ना यूनिवर्सिटी के अंदर. अब आपकी शिकागो या मेरी हार्वर्ड जो है, वो दे आर टेरेबल यूनिवर्सिटीज फॉर स्टूडेंट्स, फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, राइट? वो, और ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ, ये पहले कुछ, ये पिछले 50 साल का ट्रेंड है जो कि एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया. और उसमें दो बातें जो हैं वो बड़ी बुनियादी हैं. एक तो ये ट्रेंड गलत है, ये और वो उसको ठीक भी कर रहे हैं खैर वहां पे, तो दूसरे ये अनएम्यूलेटेबल, ये कर ही नहीं सकता कोई और. अमरीका के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती. लास्ट ग्रेट यूनिवर्सिटी विच वॉज फाउंडेड ऑन दिस मॉडल, के जिसके अंदर आप सुपरस्टार फैकल्टी लाएं और उनको रिसर्च कराते रहे, वो थी स्टैनफोर्ड, जो 110 साल पुरानी यूनिवर्सिटी. अमेरिका के अंदर 2-3 यूनिवर्सिटीज ने कोशिश की, राइस ने की, तो क्या नाम है वो अटलांटा में, एमरी ने की, आप ही के पड़ोस में है जॉर्ज मेसन ने की, नहीं कर सकते. लोग आएंगे और वापस चले जाएंगे, वो 7-8 यूनिवर्सिटीज हैं उसी के अंदर, चले 15-20 हैं, 30 हैं. तो ये काम जो है, ये यूनिवर्सिटीज 3 मेन पिलर्स पे खड़ी है, फैकल्टी, स्टूडेंट्स एंड इट्स जनरल फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर उसमें स्टूडेंट्स आपने भुला दिए हैं, तो दैट कैन दैट इज नॉट इन एनी वे मेरे ख्याल में वो यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा दूर जाएगी. ये तो खैर अपने जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कंपनी के मशहूरी पे चल रहे हैं. अब अमेरिका के अंदर ही दो फैसिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हु रियली एक्नॉलेज अंडरस्टूड दिस एंड हैव रियली आउटक्लास दीस प्लेसेस हैव गिवन देम रन फॉर देयर मनी. एक तो है ओलन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो 2003 में बना था. एक है हार्वी मड कॉलेज वो क्लेयरमॉन्ट कंसोर्शियम का हिस्सा. ये दोनों नंबर वन और नंबर टू हैं अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में. दे आर रैंक्ड हायर देन MIT एंड कैलटेक. मैंने MIT और कैलटेक का नाम इसलिए लिया कि ओलन 10 किलोमीटर दूर है MIT से, वो 7 किलोमीटर दूर है कैलटेक से. और उनको ये पता था कि ये गेम तो हम खेल ही नहीं सकते, ये जो ये खेल रहे हैं नामुमकिन बात है. कहाँ से लाएंगे ये इस तरह के प्रोफेसर तो इस तरह के खरबों डॉलर की लैब्स. सो दे फोकस्ड ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्पिरेशनल पेडागोजी. व्हाट स्टूडेंट्स डू देयर दे आर हमने बात की थी ना कि वाइस चांसलर के बजाय प्रोफेसर मशहूर है. ये यूनिवर्सिटीज उसको एक और स्टेप आगे ले गई हैं. उसमें प्रोफेसर से ज्यादा उनके स्टूडेंट्स मशहूर हैं because they do such fantastic work with them. Now that's the real model that Pakistan is ought to adopt, and that's emulatable. Yaar, usme to koi uska aapko $1 billion kehne JPL jet propulsion lab banane ki zarurat nahi hai na apne aap ko great university karne ke liye. You really need to really understand that what is inspirational, interesting pedagogy in this day and age, and there are now with the ubiquitousness of technology, it is very doable. So ye dusri main ek baat karunga ki what how is your university student centered.
Okay,
right. तो ये जो एक अताउर रहमान साहब ने ये जो एक किराने की दुकान खोल ली थी रिसर्च पेपर छपवाने की,
बिल्कुल सही.
राइट, सो दैट नीड्स टू बी. तीसरी चीज जो मेरा भी वेस्टेड इंटरेस्ट है और मेरा ख्याल बहुत जरूरी है कि वन हैज टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर एन इंस्टीट्यूशनल रियलिटी. अब अमेरिका के अंदर जिस तरह पब्लिक फंडिंग में कोई तख्सीस नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी की, खास तौर पर रिसर्च के लिए और खास तौर पर स्टूडेंट फंडिंग के लिए, दिस इज व्हाट हैज टू बी डन इमीडिएटली. अगर आप कई अच्छी, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वाकिफ हूँ, लम्स है, आगा खान है, कि उनके पास अगर उनको थोड़ी पब्लिक सपोर्ट हो दे विल बिकम फार मोर एक्सेसिबल. के हाउ वी क्रिएट इवन पॉलिसीज एंड विदाउट वी शुड नॉट मेक एनी मटीरियल जजमेंट रिगार्डिंग the institution just because it if it is privately chartered or it is state is sponsored. To ye teen cheeze jo hai curriculum mein, student pedagogy mein, student centeredness mein, aur integration of the sector usme bajaye ye public private ko beech mein humne firewall banayi hui hai. Jab aap planning commission mein the, I guarantee you ke the word private universities never appeared in any policy document. Apart from harassing them and policing them.
आपकी बात सही है, बट इसमें ये भी तो मसला है ना कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बड़ी किस्म की हैं. माना आप लोगों की यूनिवर्सिटीज प्राइवेट फाउंडेशन और उस तरह हैं, बट देर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में जो कि फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज हैं और वहाँ
होंगी. तो आप उनको उसी तरह से तो आप देखें ना, आप घोड़े गधे को इकट्ठा कैसे मान सकते हैं.
हाँ, वही ना.
How do Americans do it, right? So they have for profit universities. They are all थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास यूनिवर्सिटीज. आपके इर्द गिर्द हैं बहुत सी हैं, फीनिक्स यूनिवर्सिटी तो, ट्रंप यूनिवर्सिटी तो, ये तो वो, राइट. वो तो खुद ब खुद अगर स्टेट उसको इंश्योर कर रही है ना कि हाउ प्राइवेट यूनिवर्सिटी.
सारा जो मसला आ जाता है ना वो ये आ जाता है कि अगर एक दफा आप क्रेडिबिलिटी और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बना लें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है. हमारा जो फेलियर है ना, कलेक्टिव फेलियर है मुल्क का, कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर से लेके जुडिशरी से लेके आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लें, हमारी सब इंस्टीट्यूशन जो सी हैं वो एक किस्म का एक मोरास ऑफ इनकॉम्पिटेंस बन चुका है और लैक ऑफ ट्रस्ट इतना बन चुका है. हम लोग ट्रस्ट करते ही नहीं किसी इंस्टीट्यूशन को. प्राइम मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन ले लें उसको नहीं ट्रस्ट करते, तो उसमें अब डिफ्रेंसीशन बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो स्टेट कोशिश करता है कि बड़े ब्रॉड ब्रश से. मैं जब था हुकूमत में मैंने देखा कि यार मैं कोई भी इनिशिएटिव लेता था तो सारा वक्त मेरे ऊपर ट्रस्ट का रहता था कि भाई तुम ये ठीक काम कर रहे हो कि नहीं, गलत काम कर रहे हो. तो इसमें हम फंस जाते हैं. तो एक तो ये चीज़ है, पर नंबर दो जो रिजवी साहब बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, आपका जो सेकेंड पॉइंट था कि जी स्टूडेंट सेंटर्ड हो और आप कैसे उसको बनाएंगे, बट द की इशू इज़ कि हमारे यहाँ अगेन यूनिवर्सिटी का सिस्टम अभी बना ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं प्लानिंग कमीशन में था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मेरे पास सारे आते थे पैसे लेने के लिए, तो मैं हर किसी से एक ही सवाल पूछता था कि भाई मुझे बताएं कि आपके पास प्रोफेसर कितने हैं। मुझे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं अपना नाम नहीं किसी का लेता, पर एक आधा वो यूनिवर्सिटी आई, बहुत बड़ा उनके पास बिल्डिंग थी, मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट। मैंने पूछा जी आपके पास कितनी वो प्रोफेसर कितने हैं, कहते हैं जी के पहले तो उन्होंने कहा 100-200। मैंने कहा नहीं जी, पार्ट टाइम नहीं, मुझे फुल टाइम प्रोफेसर्स और आपके प्रोफेसर चाहिए। आई डोंट वॉन्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और वट एवर। आपको पता है हम प्रोफेसरों से यूनिवर्सिटी जज करते हैं, वी डोंट जज देम बाय असिस्टेंट प्रोफेसर्स। उन्होंने कहा जी 2 या 3। मैंने कहा जी आपके बिल्डिंग का स्क्वायर फुट और प्रोफेसर का रेशियो आपका बड़ा मजेदार है, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, हम प्रोफेसरों पे तरजीह नहीं देते, ठीक है ना जी। मैं बहुत यूनिवर्सिटी, मुझे शौक है तो मैं बहुत यूनिवर्सिटी खुद ही एक्स्ट्रा करिकुलर लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, अपने इर्द गिर्द पंजाब में जो भी हों। जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो बहुत मैं वहाँ करता हूँ ये। मैं अगेन देखता हूँ यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर नहीं मिलते और स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय पार्ट टाइम टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर।
जी मैं ये कैसे करें? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि आई लेट्स यू नो देयर ऑब्वियसली वन कैन बी यू नो यूनिवर्सली सिनिकल, राइट? दैट्स अ पोस्चर दैट मेनी ऑफ अस आर कंफर्टेबल टेकिंग, राइट? मेरा ये यू नो बिकॉज आई हैव बीन सॉर्ट ऑफ डूइंग इट नाउ फॉर 10 इयर्स एंड रियली इन्वेस्टेड इन इट, सो दीज आर माई फाइंडिंग्स, राइट? सो देयर आर मेनी there's generally a you know a spirit of wanting to do it, right? So Habibs are very you know very mm-hmm. extremely low key and low profile, but right. they have given the largest ever donation in the history of Pakistan to start an educational project.
Excellent.
Mm-hmm. $50 million they have given to start it, right? So Lum started with $10 million. The Aga Khan Medical College side of unka पैसे हॉस्पिटल पे ज्यादा लगे, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज साइड पर डोनेशन वाज $30 million। इन्होंने $50 million दिए हैं तू सिर्फ शुरू करने के लिए।
इसके बरक्स छोटी सी एक बात आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जब रॉकफेलर ने शुरू की 1892 में,
हाँ,
उसने उस वक्त $36 million दिए थे 1892 में।
ये देखिए तो अब अमेरिका के अंदर जो है, देखिए वो तो खैर अब स्केल कितना बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में $50 million देना, 5 अरब रुपए देना और हर साल डेफिसिट के भी जो हमारे $6 million का फिलहाल डेफिसिट है, स्टडी होकर 2.5-3 million रह जाएगा, उसके भी $4 million ये देते हैं हर साल। इस और बहुत सी कम्युनिटी हमारे गिर्द बेच, हमारे अभी कोई 100 के करीब जो है पीपल हु हैव सॉर्ट ऑफ गिवन एंडाउड स्कॉलरशिप्स और पुट देयर नेम ऑन अ रूम और समथिंग व्हिच हैज गॉन इन द एंडाउमेंट एंड एक्सेट्रा। सो देयर इज जनरली अ डिसेंट स्पिरिट जो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में, मेरे ख्याल में जो सबसे टेलिंग इशू है कि देयर इज वेरी लिटिल टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एज अ सेक्टर। ये लोगों को यूनिवर्सिटी एज अ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन एंड हायर एजुकेशन एज अ सेक्टर में वो फुल इनकॉम्पिटेंस और लैक ऑफ कैपेसिटी है। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस और इतनी बड़ी स्ट्रिंग थ्योरी नहीं है जो समझ में ना आ सके। मैंने जो आपसे बातें की ये, लेकिन लोगों की जो असम्पशंस हैं इसके बारे में वो फंडामेंटली गलत हैं, खराब हैं।
मेरे ख्याल ये एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ डिबेट ही किसी चीज पे नहीं।
ये डिबेट आप कर भी लेना, फॉर इंस्टेंस हर आदमी जो है, पीपल वर फैसिनेटेड बाय यू नो दिस अता रहमान इज दिस स्टेम गाय एंड ही हैज जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, राइट? अब वो How can, अब वो उनको ये बात उनके इमेजिनेशन में नहीं है कि यूनिवर्सिटी नीड्स टू बी बेडरॉक इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। उनके ख्याल में धड़ाधड़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करते रहे,
हाँ, वो तो सिर्फ और साइंस की बात करते हैं
और साइंस से करते रहे। तो ये हमारे यहाँ एक ये इशू है, राइट? एंड दैट्स वन थिंग। सो वी नीड टू क्रिएट एज यू सेड वी नीड टू क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स अराउंड इट। दैट्स वन की इशू। एंड दूसरा जो अगर हमें ये समझ में आ जाए फिर जो उसकी इंस्टीट्यूशनल डिटेल है कि फैकल्टी कितनी होनी चाहिए, फैकल्टी अब हम जो है वी हैव ऑलरेडी 60 फैकल्टी फॉर 700 स्टूडेंट्स। वन वी स्टॉप सब हमारी, जब हमारे को 900 स्टूडेंट्स होंगे और कोई 90 फैकल्टी होगी, ऑल ऑफ दम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आई एम एम्बैरस्ड टू से दैट वी हैव एन अनरिटन रूल दैट वी डोंट एक्सेप्ट एनी टर्मिनल डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान एज फैकल्टी। अब ये मुझे तकलीफ है एज ए पाकिस्तानी ये कहते हुए, लेकिन पाकिस्तान की पीएचडी जो है उसको हम प्रोफेसर तो नहीं बना सकते, राइट? और वो इसमें 90 में से 70 के करीब पाकिस्तानी होंगे जो हु आर एकेडेमिक्स लाइक योरसेल्फ, और आई एम कॉन्फिडेंट टू से कि उन 70 में से 65 कभी भी पाकिस्तान वापस ना आते अगर हबीब यूनिवर्सिटी ना होती। अगर आप एक सेंसिबल इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसमें दे फील कंफर्टेबल कि दे आर प्रॉपरली रिस्पेक्टेड, प्रॉपरली कंपनसेटेड, दे आर गिवन इनफ एकेडेमिक फ्रीडम, दे हैव अ वेरी सेंसिबल पेडागोजिकल टास्क दैट इज दैट दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, दे कम बैक, वो आ जाते हैं। तो ये मेरा ये हम्बल सा मशवरा है कि ये काम पाकिस्तान में किया जा सकता है। पाकिस्तान में अगर हम इंटेलेक्चुअली एक अच्छा एक कोहेरेंट सेक्टर बनाएं और पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट को और पाकिस्तानी स्टेट सेक्टर दोनों को ये बात पता चले कि हायर एजुकेशन, प्राइवेट हायर एजुकेशन इज़ अ वेरी वर्थ वाइल कॉज टू सपोर्ट, देन आई थिंक वी कैन एक्चुअली एड्रेस अ वेरी crucial challenge in Pakistan, which is to create a decent quality higher education experience for our young men and women. Because we have already done it. And aur main aapko dusri baat bataun ki jo value jo maashra jo hai na apne sare cynicism ke bawajood it really values quality. Karachi ke badtareen halaat mein 1984 se lekar ab tak aaj tak kisi ne Aga Khan University ke upar ek patthar bhi nahi mara. इसलिए कि सबको पता है कि ये बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हमें भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि अब से कुछ अरसे पहले तक तो उनकी कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं थी। सो देयर इज अ जनरल इंस्टिंक्ट इन वैल्यूइंग समथिंग व्हिच इज ट्रूली ऑफ गुड क्वालिटी।
देयर इज सब ह्यूमैनिटी इज ह्यूमैनिटी, हर जगह पीपल वॉन्ट क्वालिटी, हर जगह पीपल वॉन्ट गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। जैसे मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, हम अमेरिका से डिफरेंट है, अमेरिका की बातें यहाँ ना करो। मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ भाई रमज़ान जब रोज़ा खोलना हो रमज़ान में तो आप मैकडोनल्ड चले जाएं और देखें हम कितने डिफरेंट हैं, हम भी वही चीज़ें खाते हैं जो बाकी दुनिया खाती है। तो वी वॉन्ट द सेम थिंग्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी ऑल्सो सेंड अ किड्स टू कि हम अमरीका भेज देंगे पढ़ने के लिए। माँ बाप मैंने कई दफ़ा खुद एडवाइस किया लोगों को कि जी घर भेज दो पर स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड भेज दो बच्चे को, ठीक है ना।
right,
तो ये
right.
तो ये तो यूनिवर्सल चीज़ें हैं और हर सोसाइटी ये चीज़ें अप्रिशिएट करती है। जहाँ मेरा ख्याल मसला आ जाता है वो ये आ जाता है कि हमारे एकेडमिक्स ने ख़ुद ही अपना डिस्कोर्स बनाया नहीं है अभी तक। एक एकेडमिक की वैल्यू निकलती है या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की वैल्यू निकलती है जब वो सोसाइटी के डिस्कोर्स में आए और सोसाइटी के डिस्कोर्स को बढ़ाए। मैंने एक किताब लिखी है, आपको मौका हो तो ज़रूर पढ़ें, उसका नाम है लुकिंग बैक। वो उसमें मैंने यही लिखा है कि एकेडमिक्स डिक्टेट द डिस्कोर्स ऑफ सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी में जो फेलियर है कि एकेडमिक्स हैव नॉट क्रिएटेड द डिस्कोर्स ऑफ सोसाइटी, बट एकेडमिक्स उल्टा जवाब ये देंगे भाई हमें मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि हमें तो मुतहत कर दिया गया एक एडमिनिस्ट्रेटर्स के, ठीक है। तो मेरा जो आपको ये है, ये इंशाल्लाह बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हमें फिर करनी पड़ेगी। मेरा जो आपको पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैं विंटर में पाकिस्तान आ जाता हूँ, तो फिर मैं वहाँ जरूर लव टू। अच्छा देखिए ना, मसला ये है कि हमने अभी तक सिस्टम नहीं बनाया। मैं देखता हूँ जो यूनिवर्सिटी जो यहाँ है, मैं फॉर एग्जाम्पल आई लिव वेरी क्लोज टू जॉर्ज मेसन, अभी दो दिन पहले मैं जॉर्ज मेसन के प्रोफेसरों के साथ लंच वंच कर रहा था। ये यूनिवर्सिटी जॉर्ज मेसन जो है, या कोई यूनिवर्सिटी ले, यूनिवर्सिटी शिकागो ले लें, हार्वर्ड ले लें, मैं देखता हूं दे आर कंट्रीज विद इन अ कंट्री, दे आर एन इको सिस्टम विद इन अ कंट्री, ठीक है ना जी। दे हैव सो मेनी एक्टिविटीज गोइंग ऑन, दे हैव गॉट सो मच स्टफ गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्री और मैं करता हूँ, आई गो एंड अटेंड जॉर्ज मेसन क्लासेस समटाइम्स, आई गो एंड अटेंड जॉर्ज वॉशिंगटन क्लासेस।
एसन बट को जानते हैं, इज अ वेरी prominent University of Chicago political scientist there.
I have no seen the name but I haven't met him. No.
अच्छा
तो पॉइंट इज कि ये जो चीज़ है ना यूनिवर्सिटी में इकोसिस्टम बनाना, वो हमारी यूनिवर्सिटीज अभी तक नहीं बना सकी, ना अपने आप को एक डिस्कोर्स में डाल सकी हैं सोसाइटल डिस्कोर्स पे। तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। नंबर तीन जो बहुत बड़ा मसला आ जाता है वो ये आ जाता है कि स्टूडेंट्स पढ़ के जाएँ कहाँ। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इतने हो गए हैं कि आपके HEC के PhDs जुलूस निकाल रहे हैं इस्लामाबाद में कि भाई हमारी नौकरियाँ कहाँ हैं। तो ये एक और बात आ जाती है। तो एजुकेशन प्लानिंग के सिलसिले में अब आपसे आगे बात करनी पड़ेगी। आज तो आपसे बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे और इन चीज़ों पे। मेरा ख्याल नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ एजुकेशन प्लानिंग पे किया जाए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स है चलाने के लिए इस मुल्क में।
एब्सोल्युटली आई कुडंट एग्री मोर।
पर मुझे दो बातें जाते जाते बताएं। एक तो ये बताएं आपकी फेवरेट किताब क्या और क्या रेकमेंड करेंगे आप स्टूडेंट्स को कि वो ज़रूर पढ़ें। मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा पॉडकास्ट स्टूडेंट ज़रूर सुने और मैं चाहता हूँ कि वो हमारी बुक रिकमेंडेशन ज़रूर देखें, क्योंकि बुक रिकमेंडेशन से पता चलता है कि इंसान क्या सोच रहा है।
ये तो आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया है, राइट, क्योंकि ये तो इट इज बुक्स, तो एक फेवरेट किताब निकालना।
चले वैसे मैं इसके साथ आगे बढ़ा भी देता हूं, मैं कहता हूं शायद फिल्म भी बता दे जो आप कहें।
इट्स इजी, राइट, सो व्हिच इज दीवाने गालिब, राइट?
दीवाने गालिब, अच्छा ठीक, वजह बताइए।
दीवाने गालिब, हां दीवाने गालिब तो खैर एक बाकमाल चीज है और आई ऑलवेज डू माय आवर स्टूडेंट कन्वोकेशन, जो क्लास शुरू होती है, सो आई बिल्ड माय स्पीच अराउंड टू अशआर ऑफ गालिब, कोई से भी दो। इस दफा मैंने जो उसका शेर है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम, या रब हमने दश्ते इमकां को एक नक्शे पा पाया, वो उसका इसकी एक बड़ी मशहूर गजल है उससे है। और एंड देन दूसरी जो नावल दैट आई रियली लव इज इश्माइल, दिस इज अ फिलोसॉफिकल नावल बाय डैनियल क्विन एंड इट एग्जामिन्स द हार्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, राइट? एंड इस वक्त जो एंथ्रोपोसीन जो क्लाइमेटिक कैटेस्ट्रफी हमारे सर के ऊपर है, ये नॉवल काफी पहले लिखा गया था लेकिन इट वाज अ प्रोफेटिक नॉवल, राइट? एंड इट रियली इन रियली मिथोलॉजिकल फॉर्म्स इट गिव्स वेरी पॉइनियंट पैशनेट इनसाइट इनटू हाउ व्हाट वी हैव बिकम व्हेन वी हैव परसूड व्हाट वी कॉल मॉडर्न सिविलाइजेशन।
एक्सीलेंट, ठीक।
तो इट्स कॉल्ड इश्माइल,
आप स्टूडेंट्स को क्या रेकमेंड करेंगे या इवन जर्नलिस्ट को जो लिखते हैं कि जब वो एजुकेशन के बारे में लिखें, हायर एजुकेशन के बारे में, तो वो किस वांटेज पॉइंट से लिखें और कैसे सोचे उसके बारे में लिखने का?
देखिए, अगर वो कोई सब्जेक्ट अगर वो क्रिटिकल अप्रेजल लिख रहे हैं, सो मेरी उनको जो अर्ज है वो ये है कि दे नीड टू सी कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो उस यूनिवर्सिटी को इस तरह से देखें कि इसमें व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एजेंसी इज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, आर दे पैसिव और आर दे एंगेज्ड इन क्रिएटिंग समथिंग, एंड द सेम इज फॉर जर्नलिस्ट बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू a slightly broader point of view ki that agency is expanded both to students and faculty.
Right? yani ki student centered aur student agency, agency bada acha lafz aapne istemal kiya, student agency dekhen ki wo kitna participate kar rahe hain, kitna unko participation ka time mil raha hai aur mauka mil raha hai.
Bilkul
theek hai,
right?
Right. Sir, thank you very much. It's been a very interesting discussion, but I'm very honored. Invite you to do this a few more times because हमने तो बहुत subjects अभी unexplored छोड़े हुए, तो इंशाल्लाह क्योंकि ये subject इतना बड़ा है, और कुछ नहीं कर, subject इतना बड़ा है, मेरा ख्याल है सर life blood of Pakistan है, subject को हमें बहुत explore करना चाहिए।
Absolutely,
ठीक है, thank you very much, all the best,
thank you, खुदा all right, pleasure।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।